नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमेशा की तरह आपका अपना प्रिय बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से इब्रानियों नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया ताकि सबके लिए एक बार बलिदान होकर उद्धार के उस कार्य को पूरा कर सके और हमारे लिए वह इस समय महायाजक के रूप में पिता के निकटता में है। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर अपनी वाचा को हम पर भी पूरा करता है। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हम में से प्रत्येक के जीवन के लिए जिसे आपने हमें दान स्वरूप दिया है। यद्यपि कि हम निर्बल और कमजोर हैं, इसके बावजूद आप हमसे प्रेम करते हैं, हमारी चिंता करते हैं, हमारी जरूरतों को आप पूरा करते हैं। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक भाई बहन जब आपके वचन को सुने समझ सके और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, बुरी बातों से, बुरी संगति से और शैतान के हर एक छल प्रपंच से एक एक की आप रक्षा करें। इस घड़ी प्रभु हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार हैं, निराश और चिंतित हैं, आपके वचन को सुनना चाहते हैं। आप उन्हें छुए, चंगाई प्रदान करें और उन्हें अपनी शांति दे ताकि एक एक जीवन आप में बलवंत होने पाए। आज के अध्ययन पर अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि मैंने कहा है कि हम सब इन दिनों इब्रानियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, तो आइए आप मेरे साथ इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 15 से 17 पद को पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 15 से 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। मेरे मित्रों, यह संदर्भ यर्मिया की पुस्तक अध्याय 31 का है जो एक महत्वपूर्ण संदर्भ है। परमेश्वर कहता है कि वह इसराइल के साथ नई वाचा बांधेगा। परमेश्वर ने उनके साथ व्यवहार समाप्त नहीं किया है। यदि आप बाइबल को पढ़ें तो आप समझ जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इब्रानियों की पत्री में यह अंश पुरानी और नई वाचा अर्थात नया नियम और पुराना नियम की एक विभाजक खाई है, परंतु यह न भूलें कि दोनों वाचाएं परमेश्वर ही की हैं। पद 9 में देखें, वहां लिखा है, वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे, अर्थात उसने पहली वाचा को उठाकर नई वाचा को स्थापित किया। जब प्रभु यीशु क्रूस पर मरा था तब मंदिर का पर्दा फटकर दो भाग हो गया था। अब मनुष्य को बैल और बकरों के लहू द्वारा परमेश्वर के पास आने की आवश्यकता नहीं थी। प्रभु यीशु ने अपने लहू द्वारा हमारे लिए परमेश्वर का मार्ग खोल दिया है। पद 10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। कहने का अर्थ है कि प्रभु यीशु ने एक ही बार सदा का बलिदान चढ़ाकर सब बलिदानों का अंत कर दिया। सन 70 में रोमी सेनापति तीतुस द्वारा मंदिर ध्वंस किया गया और बलिदानों का अंत हो गया। मेरे प्रियो, आज इसराइल में पशु बलि नहीं चढ़ाई जाती है और उनकी भावी संभावना भी बहुत कम है। प्रभु यीशु ने दूसरे को स्थापित करने के लिए पहले को उठा लिया। इसके महत्व पर आवश्यकता से अधिक बल नहीं दिया जा सकता है। पुराना नियम अनेक विधि विधानों के साथ एक व्यवस्था थी। बलि चढ़ाने के अनेक विस्तृत नियम थे, 10 आज्ञाएं तथा अन्य आज्ञाएं एवं नियम भी थे। और सच तो यह है कि विधि विधान मानव स्वभाव को अच्छे लगते हैं। वे सोचते हैं कि नियम पालन आसान काम होता है, इसलिए वे पर्वतीय उपदेश आधारित धर्म का पालन करते हैं, जबकि वे उसका अर्थ नहीं समझते। अतः वे सोचते हैं कि वे उसे जीवन में अपना सकते हैं। यह उनका भ्रम है। विभिन्न कलीसियाई वर्ग इसका प्रमाण है। मनुष्य नियमों का जीवन जीना पसंद करता है, परंतु वह उसमें विफल होता है। परंतु नई वाचा में हम एक भिन्न व्यवस्था के अधीन हैं। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 6 पद में पौलुस कहता है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, शब्द मारता है। अनेकों को यह भ्रम हो गया है कि बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए, परंतु यहां शब्द का प्रसंग 10 आज्ञाओं से है, क्योंकि वे मृत्यु की सेवा हैं। मेरे प्रियो, व्यवस्था से किसी को जीवन नहीं मिला। व्यवस्था मृत्युदायक है, क्योंकि वह परमेश्वर के दंड को लाती है। जीवन दाता तो वास्तव में पवित्र आत्मा है। इस युग में पवित्र आत्मा नव जीवन देता है। वही हमारी अगुवाई करता है और हम पर परमेश्वर की इच्छा प्रकट करता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 18 पद में हम पढ़ते हैं, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। मेरे मित्रों, बलि चढ़ाने का अभ्यास हाबिल ने आरंभ किया था और प्रभु यीशु ने उसके अंतिम चरण को पूरा किया। इस पद के साथ सैद्धांतिक भाग का यहां पर अंत होता है। और इतना ही नहीं, अध्याय 10 पद 18 के साथ धर्म सिद्धांत के भाग का अंत करते हुए और एक नया पक्ष आरंभ होता है। पद 19 से 25 तक का अंश व्यवहारात्मक भाग है, जिसमें सौभाग्य और उत्तरदायित्व का वर्णन किया गया है। इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाब हो गया है। यहां पर लिखा है हियाब। हियाब का तात्पर्य है बोलने का साहस, परंतु इसमें अहंकार नहीं है। अब ध्यान दें, हम परम पवित्र अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे प्रवेश करते हैं? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा। जी हाँ, उसी के लहू के द्वारा हम उसके पास या उसमें प्रवेश करते हैं। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय के 20 पद में आगे लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। यीशु के क्रूसीकरण पर मंदिर का पर्दा बीचों बीच फटकर दो भाग हो गया था। इसका अर्थ है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आने का मार्ग खुल गया था। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, यहाँ शरीर शब्द वही शब्द है जो यूहन्ना के आमुख में आया है, वचन देहधारी हुआ। यूहन्ना ने यह नहीं कहा है कि यह एक नया एवं जीवित मार्ग था जो परमेश्वर के निकट आने को खोला गया, क्योंकि प्रभु यीशु का देह धारण अर्थात उसका जीवन उद्धारक नहीं है। हम परम पवित्र स्थान में प्रभु यीशु के लहू के द्वारा प्रवेश करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का अधिकार हमें उसके देह धारण से नहीं, पर्दे के फटने अर्थात उसकी मृत्यु से प्राप्त होता है। मेरे मित्रों, हमें प्रभु यीशु के जीवन से नहीं, उसकी मृत्यु से परमेश्वर की उपासना करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यह अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान देकर हमारे लिए एक नया एवं जीवंत मार्ग खोल दिया है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकें। मेरे प्रियो, ये पुरानी पशु बलियां अब किसी भी काम की नहीं है। इसलिए यदि आज संसार में लोग किसी भी प्रकार का पशु बलि चढ़ाते हैं तो निश्चय ही जाने कि यह उन्हें सिर्फ पाप ही बोध कराएगी, न कि उन्हें उद्धार दिलाएगी, क्योंकि अब किसी भी प्रकार की पशु बलि की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु आज से 2013 साल पहले इस जगत में आया और हम सब के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हो गया, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हम सब उद्धार को प्राप्त कर सकें। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मेरे मित्रों, स्वर्गीय पिता के पास एक मध्यस्थ का होना हमारा कैसा सौभाग्य है। धर्मी प्रभु यीशु हमारे लिए लगातार विनती करता रहता है। हम पढ़ते हैं, पर्दे में से होकर यीशु ने क्रूस पर ज्यों ही प्राण त्यागे, त्यों ही मंदिर का पर्दा बीचों बीच फटकर दो भाग में हो गया और परमेश्वर की उपस्थिति का मार्ग खुल गया। हमें एक निमंत्रण दिया गया है। कुछ टीकाकारों के अनुसार यह निमंत्रण उद्धार से रहित मनुष्यों के लिए है, और मेरे विचार में यह निमंत्रण उद्धार प्राप्त और उद्धार रहित दोनों ही के लिए है। अब क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की दाहिनी ओर उपस्थित एक महायाजक है जो हमारे लिए निवेदन करता है। इब्रानियों के पत्र 10 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। मेरे प्रिय मित्रों, यह हारून की रीति पर याजक के समर्पण के संदर्भ में है। मूसा उन पर समर्पण का जल छिड़कता था, उनको स्नान करना होता था कि परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किया जाना प्रकट हो। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर के लिए हमारा समर्पण हमें इस योग्य है कि हम सच्चे मन से परमेश्वर के निकट आने पाएं। लिखा है, पूरे विश्वास के साथ अर्थात पूर्ण विश्वास में। इसमें हमारे विश्वास की मात्रा की कोई भूमिका नहीं है, इसमें हमारे विश्वास के कर्ता की कोई भूमिका नहीं है। सच्चा विश्वास विश्वास के कर्ता पर आश्रित होता है। विश्वास गलत स्थान पर भी हो सकता है। आप इस पृथ्वी पर किसी मनुष्य पर विश्वास करके निराश हो सकते हैं। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करें, जिसका अर्थ बस यही है कि आप नास्तिक नहीं हैं। आप में परमेश्वर का बोध और धार्मिकता के मार्ग का ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं, आपको अपने विश्वास के अनुसार काम भी करना है। सच्चे विश्वास का अर्थ है कि आपने प्रभु यीशु को सच में अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 11 और 12 पद में लिखा है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु में विश्वास करने का अर्थ है उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना। विश्वास का अर्थ है ज्ञान आधारित कार्य। परमेश्वर हमें अंधकार में छलांग लगाने को नहीं कहता है। जो अंधकार में छलांग लगाने को विश्वास कहते हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। ऐसा करना आत्महत्या है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है। हम रोमियो के पत्र 10 अध्याय के 17 पद में पढ़ते हैं, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर ने हमारे विश्वास के लिए एक आधार नियुक्त किया है। 1 कुरिन्थियों 3:11 पद में लिखा है, उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। आप उस नींव पर चढ़ते हैं तो वह ज्ञान है, परंतु आपको वहां ले जाने वाला विश्वास है। जी हाँ, विश्वास का अर्थ है ज्ञान के आधार पर कार्य करना, अर्थात प्रभु यीशु पर विश्वास करना कि वह आपका उद्धार करता है। हम आगे पढ़ते हैं, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। मेरे मित्रों, इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम याजक हैं। जॉन कैल्विन ने एक महान सत्य की खोज की, सब विश्वासियों की याजकीय सेवा। अब याजक होने के कारण आप बोलने का साहस धरकर परमेश्वर के पास आ सकते हैं। विश्वासी प्रायः पादरी से प्रार्थना करने के लिए निवेदन करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु हमें नहीं भूलना है कि हम सबको परमेश्वर के पास आने की स्वतंत्रता है। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का उतना ही अधिकार है जितना मुझे है, क्योंकि हम प्रभु यीशु द्वारा बनाए गए नए बलिदान के मार्ग से होकर आते हैं। परमेश्वर के पास आने का यही एक मार्ग है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। यहां पर लिखा है, आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। विश्वास में आशा का अभिप्राय होता है। हम परमेश्वर के निकट आए और अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्यों? क्योंकि हमें आशा है जो भविष्य संबंधित है, और यह सच है। यह कैसी अद्भुत बात है कि हम पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आ सकते हैं और हम अपने विश्वास के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रह सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी आशा है। पद 22 में हमें परमेश्वर के निकट आने को कहा गया है और पद 23 में हमें विश्वास को दृढ़ता से थामे रहने को कहा गया है। और अब हम तीसरी बात देखते हैं, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। उस्काने का मूल अर्थ है उत्साह दिलाना। अतः हम एक दूसरे को प्रेम और भले कामों के लिए उत्साहित करते रहें। क्या मैं आपको क्रोध दिलाता हूँ? कुछ विश्वासी जन कहते हैं कि मैंने उनके विवेक को हिला दिया है। काश मैं आपके विवेक को हिला देता कि आप एक दूसरे से प्रेम करें और परमेश्वर के लिए कुछ भले काम करें। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसके 25 पद में लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। एक दूसरे को कष्ट देने की अपेक्षा उचित तो यह होगा कि हम प्रभु यीशु के निकट परस्पर प्रेम में एकत्र हों, एक दूसरे को समझाते रहें। आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन का एक साथ अध्ययन करें। परमेश्वर ने सहभागिता के लिए जो आशीषें रखी हैं, वे परमेश्वर किसी अकेले मनुष्य को नहीं देता। परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने में मेरा स्वार्थ यह है कि परमेश्वर मुझे उसके वचन के ज्ञान में बढ़ने नहीं देगा यदि मैं उसे दूसरों के साथ नहीं बांटूं। मेरे मित्रों, हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। यदि आपके कलीसिया में बाइबल अध्ययन होता है तो वहां अवश्य ही आप जाएं, क्योंकि वहां आपको जो आशीष मिलेगी वह आपके व्यक्तिगत अध्ययन में नहीं होगी। अतः तीन पद ऐसे हैं जिनमें आओ एक आग्रह है, तो आओ पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, प्रेम और भले कामों में। यहाँ पर भी तीन शिष्टताएं हैं, विश्वास, आशा और प्रेम। यह पत्री कैसी व्यवहारिक है, ज्यों ज्यों दिन को निकट आते देखो। मेरे प्रियो, यहूदियों के लिए यह दिन मंदिर के विनाश का दिन था। विश्वासी भी उस समय मंदिर में एकत्र होते थे। पवित्र आत्मा के अवतरण के समय वे मंदिर में ही एकत्र थे। पत्रस और यूहन्ना ने मंदिर में प्रवेश करते समय सुंदर फाटक पर ही लंगड़े मनुष्य को चंगा किया था, परंतु मंदिर नहीं रहा तो वे कहां एकत्र होंगे। सन 70 में मंदिर ध्वंस हो जाने के बाद विश्वासी घरों में एकत्र होते थे। खतरे का संकेत अर्थात तिरस्कार का संकट, यह एक अत्यंत पावन चेतावनी है। इससे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, परंतु आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उसने अपने विश्वासियों को अवसर दिया है कि वे कलीसियाओं में इकट्ठे होकर उसकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं, वचनों में से मनन चिंतन कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। मेरे मित्रों, मुझे आशा है कि आप अपने कलीसिया में ऐसा करते हैं। यदि नहीं तो आप इसे आरंभ करें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आप सबने आज के इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। श्रोता, हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के द्वारा आपको परमेश्वर के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हुई होगी। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल आपके लिए उपलब्ध है। यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप हमें इस नंबर पर SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 09651433397। एक बार फिर से नोट कर लें, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।